महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 13। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयलियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें द्वितीय स्थितिबंध अधिकार को देखते हुए दूसरे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 51 पर हम आ गए, 51। यहाँ अपना बंधकाल जो है उसकी बात चल रही है, यानी उत्कृष्ट स्थितिबंध का, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल। ऐसे ही अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, इसकी हम चर्चा कर रहे थे ओग में बताने के बाद। अभी हम मार्गणाओं में देख रहे हैं, वेद मार्गणा की बात अभी हम शुरू करते हैं। 51 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, नीचे से जो पांचवी लाइन है वहां से पढ़ेंगे। स्त्री वेद और पुरुष वेद में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओघ के समान है। लक्ष्मी कितना है ओघ के समान? एक समय से अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है। हमेशा ओग में हमने जघन्य काल कितना देखा था, याद है? अंतर्मूर्त। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? एक समय कैसे होगा आपको बहुत अच्छा, मार्गणा बदल जाएगी। यानी किसी स्त्री वेदी ने उत्कृष्ट स्थिति बंध किया मरण के एक समय पूर्व, फिर अनुत्कृष्ट किया एक समय के लिए, और स्त्री वेदी मरकर नपुसक वेद या पुरुष वेद में जन्मा, मार्गणा बदल गई। या अनुत्कृष्ट के लिए दूसरा कौन सा और भी हो सकता है? अपगत वेदी, सवेदी हो गया, एक समय के लिए बंद किया और फिर उसके मर गया तो पुरुष वेद में उत्पन्न हुआ, यह भी हो सकता है। उत्कृष्ट काल अभी हमने पढ़ा नहीं। देखो उत्कृष्ट काल क्या है कि उसने अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, यानी स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल लेना है, वो कितना होता है? तो पल्ल्योपम शतपृथक्त्व। और पुरुष वेद में रहने का उत्कृष्ट काल सागरोपम शतपृथक्त्व। देखो जब हम किसी की काय स्थिति देखते हैं ना, हम 51 पेज लास्ट में आए हम, क्योंकि कहीं कहीं एक इंद्रियों की काय स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन होने पर भी, वो तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक ही कहा है, तो ये कैसे समझना है? तो जिस मार्गणा की काय स्थिति असंख्यात लोक से कम है उसकी पूरी काय स्थिति लेना, उसने उत्कृष्ट बंध किया ही नहीं। पर जहां असंख्यात लोक से बड़ा काल होगा उस काय स्थिति का, जैसे हमने एक इंद्रियों में रहने का काल कितना है तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन, तो वहां पर तो ले लेना पूर्ण असंख्यात लोग। हाँ, तो ये स्त्री वेद और पुरुष वेद की बात देखिए, आयु कर्म का काल ओघ के समान है, यानी उत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट एक समय पहला समय होता है और अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त होगा। क्योंकि देखो जैसे क्रोध मान माया लोभ या योग पलटते हैं, आयु बंध के काल में भी वो पलट जाएगा, ऐसा किसी जीव का वेद उस भव में तो कायम रहता है, इसलिए आयु के बंध होते हुए वेद मिट जावे ऐसा भी नहीं होगा। आप कहेंगे कोई अपगत वेदी हो जावे तो, पर वहां तो आयु बनती नहीं है, इसलिए उसके वेद के उदय में रहते हुए अंतर्मूर्त तक तो आयु का बंध होगा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपगत वेदियों में सात कर्मों का काल मनोयोगियों के समान है, यानी कैसे समझना, उत्कृष्ट का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट मैं आपको पूछ रही हूँ अंतर्मूर्त है तो आपको अंतर्मूर्त कैसे होगा आपको बताना है। उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त आपको डिराइव करना है। हाँ, नीचे आया तो उत्कृष्ट कब होगा, उत्कृष्ट कब होगा, उत्कृष्ट की बात कर, उतरते समय शुरुआत में, हाँ सवेद होने के पहले, तो पर सवेद होने के पहले अंतर्मूर्त तक उसका उत्कृष्ट हो सकता है, तो एक समय कैसे होगा। हाँ मैंने अंतर्मूर्त पूछा, आपने बताया, अभी एक समय बताओ। हाँ देखो उतरते हुए, क्योंकि वहां स्थितिबंध एक ही स्थितिबंध अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त तक होता रहता है, उतरते समय वो स्थितिबंध बढ़ते चला जाएगा। जब बढ़ते हुए अपगत वेदी के लिए उत्कृष्ट हुआ, वो अपगत वेदी का जो काल है अंतिम काल, उसमें से वो सवेदी होने वाला है, तो सवेदी होने के पहला अंतर्मूर्त जो है जिसको हम स्थितिबंधापसरण का काल कहते हैं, स्थितिबंध का काल कहो, उसमें आया और एक समय उत्कृष्ट करके मरा और देव में गया, हाँ तो अपगत वेदी का सवेदी हो गया। और अंतर्मूर्त कैसे, क्योंकि लगातार अंतर्मूर्त तक उतना का उतना बंद होता है, इसलिए ख्याल में आई ना बात ये। हाँ ये उत्कृष्ट की बात हो गई। अब अनुत्कृष्ट के आपको अनुत्कृष्ट का कैसे होगा, एक समय अंतर्मूर्त, अभी हमको घटित करना है, अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय। देखो देखो चढ़ते समय अपगत वेदी होकर उसने जो बंद किया वो अनुत्कृष्ट ही था, मर गया, या ऊपर से आया नीचे ग्यारहवें से दसवें में आया, तो दसवें में आया तो उसने तो अनुत्कृष्ट बंद किया और मरकर देव में गया, दोनों तरफ हो सकता है, वो एक समय हुआ। और अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त भी बताना है आपको, उत्कृष्ट करेगा ही क्योंकि नवे गुणस्थान के परिणाम फिक्स है, उसके लिए उत्कृष्ट होगा ही। अलग अलग जो अलग अलग बंद करते ऐसे नवे गुणस्थान में नहीं होता। देखो अनुत्कृष्ट, हाँ यानी दसवें में आते ही उसका अनुत्कृष्ट बंद शुरू हुआ और फिर उत्कृष्ट करने के पहले वाला काल लेना, और यह चढ़ते समय उसने जो किया था वो अनुत्कृष्ट ही था, क्योंकि उत्कृष्ट जो लौटने पर होता है, इस तरह से अंतर्मूर्त घटित होता है। ख्याल में ये बात, इसीलिए उसके मार्गणा में तो उतनी रहेगी, तो उस मार्गणा में अंतर्मूर्त तक उसने अनुत्कृष्ट किया, या ग्यारहवें में पहुंचा तो बंदर रुक गया, अपगत वेदी होते हुए बंदर रुक गया, तो सवेद भाग के बाद अपगत वेदी होते ही अभी नवे गुणस्थान में है, नवे का रिमेनिंग काल और दसवे का पूरा काल, अपगत वेदी रहते हुए उसने पूरा का पूरा जो अंतर्मूर्त प्रमाण काल है उसने अनुत्कृष्ट ही बंद किया था, या उतरते समय, उतरते समय जब तक वो उत्कृष्ट नहीं करता तब तक अनुत्कृष्ट लेना, तो चढ़ते वाले का काल हम गिन सकते हैं यहाँ पर, या उतरते वाले का लेना है तो अंतिम उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल छोड़कर अनुत्कृष्ट को गिनना पड़ेगा। चढ़ते समय भी हो सकता है, ये दोनों हो गया। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय में छह कर्मों का काल होता है, अब विशेषांत। अपगत वेद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, इसलिए हाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। ये बात पूरी बराबर लागू नहीं होती, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबंध केवल उतरते समय अंतिम अंतर्मूर्त में होगा। अपगत वेदी एक समय इसलिए उत्कृष्ट एक समय किया, ऐसा नहीं कह सकते हम। ख्याल में आई बात? विशेषार्थ में कुछ बात छूट गई है उनकी। अनुत्कृष्ट के लिए हम कह सकते हैं कि अपगत वेदी का एक समय घटित होता है, यह अनुत्कृष्ट के लिए सिद्ध हो जाता है। उत्कृष्ट के लिए उतरते समय अंतिम स्थिति बंध का जो अंतर्मूर्त काल है उसमें ही उसको घटित कर लेना चाहिए। उतरने वाले का अंतिम स्थिति बंध, हाँ, उनमें उत्कृष्ट होगा। उतरने वाले का अंतिम स्थिति बंध उत्कृष्ट होगा, वहां एक समय तक रहकर मरा तो एक समय होगा, अंतर्मूर्त तक रहा तो अंतर्मूर्त होगा। यानी उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि उतरने वाले का अंतिम स्थिति बंध है वो उत्कृष्ट होता है यानी अंतर्मूर्त तक होता है, और उसमें एक समय रहे या अंतर्मूर्त रहे। यानी पूरा अंतर्मूर्त रहा तो अंतर्मूर्त घटित हो ही जाता है, और एक समय में मरा तो एक समय घटित हो जाता है। ये हो गया। अभी आगे विभंग ज्ञान में देखो, नपुसक वेद में कैसा होगा, नहीं नहीं उसके मैंने श्री वेद ये जो छोड़िए ना, क्योंकि नपुसक वेद का पहले बता चुके थे, हाँ, तो ओक के समान हो जाएगा, ओक के समान हो जाएगा। अब विभंग ज्ञान में मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी का तो ओक के समान हो जाएगा। अब यहां विभंग ज्ञान में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओक के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम है, सातवें नरक में घटित होगा। कुछ कम इसलिए किया कि अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता, पर्याप्त होने पर होगा। यानी नारकी पर्याप्त होने पर, सातवें नरक में आयु कर्म का काल ओघ के समान है, यानी उत्कृष्ट का जघन्य कहो उत्कृष्ट को एक समय है और अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त होता है। परंतु अनुत्कृष्ट का मेरे ख्याल से अनुत्कृष्ट का एक समय घटित होगा, नहीं, विभंग ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अगर मनुष्य तीन इंचों में एक समय नहीं घटित होगा पहला पहले, क्योंकि आयुबंध शुरू किया था और विभंग ज्ञान नष्ट होकर उसका रेगुलर मतिशुत अज्ञानी हो गया, वो किस समान क्यों कहा, ऊपर क्या है। अनुत्कृष्ट का एक समय कैसा होगा, अनुत्कृष्ट तो अंतर्मूर्त होगा ही, देखो मनुष्य तिर्यंचो में विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त तक रहता है, तो विभंग ज्ञान में उसने आयु बंध चालू किया और वो विभंग ज्ञान नष्ट हो गया, ये हो सकता है ना? वहां अनुत्कृष्ट का एक समय क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न है। ऊपर क्या विभंगे सत्तन्नम कम उपकस उगम अनुपकस जहन ने लिखे है ना, सॉरी मैं आयु कर्म अनुत्कृष्ट, सात कर्मों का अनुत्कृष्ट लिया और आयु का उगम, अभी विभंग ज्ञान का अनुत्कृष्ट जघन्य काल एक समय कैसे घटित करेंगे? देवनारकी में सासादन में होगा, क्योंकि वो नियम से वो तो विभंग ज्ञान होगा ही और सासादन में एक समय रहकर मरण होगा तो हो जाएगा उनका। आयु ओक के समान विभंग ज्ञानी देवों में होगा, परंतु मनुष्य तिरेंचो में क्या लेना है पता नहीं। मैं प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य तिरेंचो में एक समय क्यों नहीं लिया? आगे बढ़ते अभिनिबोधिक ज्ञान, ये 52 का प्रश्न हमारा रह जाता है ना, पेज नंबर 52। विभंग ज्ञान में आयु का अनुत्कृष्ट बन, नहीं कुछ नहीं लिखा था, मैंने मनुष्य तिरेंच में एक समय क्यों नहीं घटित किया, अभी आगे बढ़ते हैं। या शायद जनरली देवनारकी की अपेक्षा बताया होगा, अब आगे देखते हैं। अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। देखो अभिनिबोधिक ज्ञानी में उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा? मिथ्या तो के सन्मुख चौथा गुणस्थान वाला, वो एक समय होकर नहीं, वो अंतर्मूर्त तक उसको लगातार होगा, इसलिए जगन्य भी अंतर्मूर्त कहा। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि वो अंतर्मूर्त तक सम्यक भी रहा, उसने अनुत्कृष्ट बंध किया और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागरोपम है। साधिक 66 सागरोपम कैसे लिया? तीनों को मिलकर, उपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, इसलिए साधिक 66 लिया। आयु कर्म का काल ओघ के समान है, ओघ के समान है ने उत्कृष्ट का एक समय और अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त। मन पर्याय ज्ञान में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि हमने देखा था ना मनपरी ज्ञान का कब लेना, असंयम के सन्मुख वाला लेना, वो मिथ्यात्व के सन्मुख नहीं लेना, क्या ये मैं उत्कृष्ट की बात कर रही, अभी अनुत्कृष्ट की बात। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है, क्योंकि अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे होगा, क्योंकि मन परिज्ञानी उपशम श्रेणी चढ़ा, ग्यारहवें में गया, वहां बंद नहीं था, दसवें में आया तो एक समय में बंद हुआ और मरण हुआ, तो मन परिज्ञान नहीं रहा, इसलिए एक समय हो जाएगी। मन परिज्ञान में घटित होता है, क्योंकि मन परिज्ञान नहीं रहता देवों में, पर मतिशुता अवधि में यह बात घटित नहीं होगी, क्योंकि देव में जाने पर भी मतिशुता अवधि तो रहता ही रहता है। हाँ, ग्यारहवें में बंद ही नहीं था, दसवें में आया तो बंद हुआ, हाँ वो एक समय अनुत्कृष्ट ही हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट कब था, चौथे के सन्मुख वाला था, अदरवाइज वो अनुत्कृष्ट ही करता है। यानी छह के लिए ग्यारह दसवें में आया और मोहनी के लिए नौवे में आया, ऐसा लेना पड़ेगा। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है, क्योंकि मन परिज्ञान उत्पन्न हुआ है, हाँ, और मरण तक उसका रहा, यानी कुछ कम पूर्व कोटि लेना नहीं इसमें, तो आठ वर्ष कम कर देना, संयम धारण करने के पश्चात उसको मन परिज्ञान हुआ और पूरे लाइफ टाइम तक रहा, ये मैक्सिमम होगा। मोक्ष जाने वाले के इतना मैक्सिमम नहीं होगा, उसके अंतर्मुख कुछ कम करने पड़ेंगे। और आयु कर्म का काल ओघ के समान है, वही उत्कृष्ट का एक समय, अनुत्कृष्ट का अंतर्मूल। इसी प्रकार संयत सामयिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयत जीवों के जानना चाहिए। उसमें केवल स्वामित्व में डिफरेंस होगा, संयत के लिए छठे से मिथ्यात्व में जाने वाला जीव लिया था, सामयिक छेदोपस्थापना के लिए भी, परिहार विशुद्धि के लिए सामयिक छेदोपस्थापना के सन्मुख वाला जीव लिया था। संयता संयतों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी वो संयता संयत से मिथ्यात्व में जाने वाला जीव लेना, अंतिम स्थितिबंध अंतर्मूर्त उतना का उतना रहता है, इसलिए जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त लिया। नहीं, मैं ये विचार करती हूँ कि वहां पर उसका मरण नहीं होगा, एक समय किया और मरा और उत्कृष्ट किया, ये इससे घटित हो रहा है ना, नहीं समझे? संयता संयत में वो अंतर्मूर्त बताए ना, जघन्य भी अंतर्मूर्त बताए, जघन्य एक समय नहीं कहा, यानी उसके संकलेश परिणाम हुए, एक समय तक हुआ और मरकर देव हुआ, चौथे में गया, ऐसा नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। यानी पूरा वो अंतर्मूर्त प्रमाण, वो जघन्य स्थितिबंध का काल पूरा, सॉरी उत्कृष्ट का काल पूरा करके मरेगा, यद मिथ्या तो में जाके फिर बाद में अंतर्मूर्त के पश्चात मरेगा। हमने ये भी देखा था, सम्यक्त्व में से जो नीचे गिरता है मिथ्यात्व में चला जाता है, अंतर्मूर्त तक उसका मरण नहीं है, तो गिरने के किसको नहीं, मिथ्यात्व में गया तो मिथ्या दृष्टि हुआ, हमारी मार्गणा पलट गई, इसलिए संयता संयत में रहते हुए उत्कृष्ट स्थितिबंध उसका अंतर्मूर्त तक होगा, यानी मिथ्यात्व में जाने के एक अंतर्मूर्त पहले से उसका होगा, सन्मुख लेना। और इसका अर्थ क्या होता है, वो सन्मुख अवस्था में भी उसका मरण नहीं होगा, एक समय करके नहीं होगा उसका, हाँ एक समय नहीं लिया उसका, अब अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि वो पांचवे में रहने का अंतर्मूर्त काल है, इसलिए अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त लिया। फिर वो हो सकता है चौथे में गया, हो सकता है सातवें में गया। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है, ये कुछ कम पूर्वकोटि सम्मूर्छन तीर्यंचों में घटित होगा, अंतर्मूर्त कम पूर्वकोटि। हवाले आयु कर्म का काल ओक के समान है, वो तो सर्वत्र वैसा ही होगा, केवल जो मार्गणा चेंज होती रहती है उसमें अलग बात होगी। चक्षु दर्शन में उक्त काल त्रस पर्याप्तकों के समान, यानी 2000 सागर होगा अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल। अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टियों में उक्त काल अवधि ज्ञानियों के समान है। अभी हमने देखा ना, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर होगा, वो यहां पर भी ले लेना। अब लेशा मार्गना की बात करते हैं। कृष्ण नील और कापोत लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओग के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त। हाँ, यानी अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त तो रहेगी बाद में, यानी उत्कृष्ट करने वाला एक समय तक अनुत्कृष्ट करके लेशा पलटे ये नहीं उसके। इसलिए अनुत्कृष्ट का भी जघन्य काल अंतर्मूर्त लिया और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 33 सागर, साधिक 33 सागर इसलिए लिया जाने के पहले और आने के पश्चात सातवें नरक में, तो साधिक 33 सागर, साधिक 17 सागर नील के लिए और साधिक 7 सागर कपोत के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले उन्होंने बताया था ना, कोई तीर्यंच मरकर नरक में आया, पहले ही अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट करके फिर यहाँ आया, इस तरह से बात आई थी। हमने वहाँ ऐसा सोचा था, वहाँ अनुत्कृष्ट बताने की जरूरत क्या थी, नरक में अनुत्कृष्ट हम पहले समय से भी ले सकते थे। आयु का कर ओके समान है। इसी प्रकार पीत पद्म और शुक्ल लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओग के समान है, उत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, देखो कृष्ण नील कापोत में अनुत्कृष्ट का भी अंतर्मूर्त लिया था, पीत पद्म शुक्ल में एक समय ले रहे। यानी देव ने उत्कृष्ट बंध किया, वो उत्कृष्ट बंध करने वाले मिथ्या दृष्टि होगा, और एक समय अनुत्कृष्ट किया उसने और मरकर लेशा अशुभ हुई। समझ में आती है बात? लेशा पलट जाती है, नरक में जाने वाला का उसी लेशा में जाता है, मिथ्या दृष्टि है और उसी का अशुभ लेशा में जा रहा है, परंतु देव पीत लेशा वाला मिथ्या दृष्टि है और वो मनुष्य 3 इंच में जन्मेगा तो उसकी लेशा एक समय में अशुभ हो जाएगी। तो देव में पहले उसने उत्कृष्ट किया, फिर अनुत्कृष्ट किया एक समय के लिए, और फिर मरकर लेशा अशुभ हुई उसकी। इसलिए पीत पद्म में उन्होंने पीत पद्म शुक्ल तीनों में एक समय ले लिया। उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक दो सागर, साधिक 18 सागर और साधिक 33 सागर है। इन्हें जाते हुए आते हुए एक एक अंतर्मुहूर्त बढ़ाया। आयु कर्म का काल ओघ के समान है। यहाँ पर भी रेशा में भी ओघ के समान बताया। अभी हमारा जो प्रश्न था विभंग ज्ञान में, वही यहाँ लागू होता है। यानी उसी लेशा में आयु का बंध पूरा होकर फिर लेशा पलटेगी। तो अगर विभंग ज्ञान में अगर आयु का बंध है तो वो पूरा होकर फिर उसमें विभंग ज्ञान उसका नष्ट होगा। मनुष्य तीरंच में ये लगता है, क्योंकि किसी एक लेशा में आयु बंध के परिणाम जो है वो उसी लेशा के में होगा ना। आयु बंध होते होते लेशा नहीं पलटेगी, तभी तो ओक के समान घटित हुआ है यहाँ पर। ख्याल में है मैं क्या कहना चाहती थी? योग पलट सकता है पर लेशा वही रहेगी। हाँ, आयु बंध के काल में लेशा वही रहेगी। आगे बढ़ते भी हम पेज नंबर 53 पर आ गए। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त ही है और उत्कृष्ट का एक ही समय। अब क्षायिक समय दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जैसे हम ओघ में देखते थे ना वैसा। क्योंकि अभी ये तो मिथ्या तो में जाने वाला नहीं है। हाँ, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागरोपम है। क्या उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्ट चौथे में रहते हुए कर सकता है ना वो। उसके लिए सातवें से चौथे में जाने की क्या आवश्यकता है? चौथे में रहने वाला ही करेगा। स्वामी देखो, उत्कृष्ट का स्वामी चाहिए ना। रेगुलर चौथे वाला लेना चाहिए, क्योंकि सातवें से चौथे वाले जाने वाले की विशुद्धि ज्यादा होगी। और देखो पेज नंबर 39 पेज निकालना, लास्ट पैराग्राफ। जो अन्यतर चार गति का जीव असंयत समय दृष्टि है, तत्प्रायोग संकलेश परिणाम वाला है, वह सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। तो ये हो गया, इसलिए एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अरविंद भाई ये कैसा होगा? उपशम श्रेणी उतरा और शपक श्रेणी चढ़ा, तभी होगा ना ये। हाँ, क्योंकि क्षायिक प्राप्त करके श्रेणी चढ़ने वाले के भी डायरेक्ट अगर शपक श्रेणी चढ़ता है, क्षायिक हुआ और शपक श्रेणी चढ़ी, मगर उसमें कौन सा छोटा होगा अंतर? उपशम श्रेणी से उतरा, उसका उत्कृष्ट तो चौथे में होता है, बाकी तो क्षायिक ही रहेगा कायम। इसलिए उसने बंद नहीं की करता था, या दूसरी बात ऐसे ले सकते कि सातवें गुण स्थान में उसने छठे सातवें में एक शायिक किया, परंतु उसमें ज्यादा टाइम जाएगा क्योंकि शायिक करने के बाद भी हजारों बार छठा सातवां करके फिर श्रेणी चढ़ेगा, यानी उपशम श्रेणी उतरा, शायिक तो पहले से ही था, उपशम श्रेणी उतरते समय उसने बंद किया तो अनुत्कृष्ट ही था और क्षपक श्रेणी चढ़कर बंद से रहित हो जाएगा। और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागरोपम में, यानी पहले भव में उसने क्षायिक किया, फिर ऊपर गया 33 सागर लौट के नीचे आया, जब तक श्रेणी चढ़कर बंध से रहित नहीं होता है तब तक उसका अनुत्कृष्ट कहेंगे पूरा। हाँ, यानी एक बाजू साधिक में क्या लेना है, दोनों ओर पूर्व कोटि कुछ कम लेना। आयु कर्म का काल ओघ के समान है, वेदक समय दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला मिथ्यात्व के सन्मुख लेना है वेदक समय दृष्टि। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल है, वो तो वेदक सम्यत्व में उसको अंतर्मूर्त तक रखना, और उसमें भी उत्कृष्ट स्थितिबंध क्योंकि वो वेदक सम्यत्व में से उसको नीचे फिर मिथ्यात्व में भेज देना, तो वहां उत्कृष्ट किया उसने अंतर्मूर्त, छोटा वाला अंतर्मूर्त। हाँ, तो वो उत्कृष्ट वाला उसमें से काल माइनस कर देना, वेदक सम्यत्व के काल में से उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल माइनस करके यथायोग्य अंतर्मूर्त उसका अनुत्कृष्ट का जघन्य काल होगा। उत्कृष्ट काल 66 सागर है। क्योंकि उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, अनुत्कृष्ट ही रहा, वेदक समय तो प्राप्त किया और वहां से क्षायिक हो गया, तो पूरा 66 सागर हो जाता है। आयु कर्म का काल ओघ के समान है, उपशम सम्य दृष्टियों और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इन दोनों में मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जीव लेना है तो उत्कृष्ट का भी अंतर्मूर्त होता है और अनुत्कृष्ट का भी अंतर्मूर्त, इसलिए कि इसमें कोई मरण नहीं होगा दोनों ही मार्गणाओं में। सासादन में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 6 अवली है, यानी उसके सासादन के योग्य उत्कृष्ट किया ही नहीं, 6 अवली तक उसका अनुत्कृष्ट ही रहा। आयु कर्म का काल ओघ के समान है। अब संगियों में संगी मार्गणा सब कर्मों का उक्त काल पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है, यानी संगी में रहने का काल जो है 1000 सागर। इस प्रकार उत्कृष्ट बंध का यानी उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल समाप्त हुआ। उत्कृष्ट बंध काल यानी उत्कृष्ट स्थिति बंध का बंध काल जो है। अब जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट और जघन्य काल बताएंगे, यानी जघन्य और अजघन्य की चर्चा करेंगे। अब जघन्य बंध काल का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। अब तक तो हम जो उत्कृष्ट स्थितिबंध देखते थे, मिथ्या दृष्टि जो है सर्व संक्लिष्ट है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है, उसकी बात करते थे, तो ओघ में जघन्य कौन करेगा, याद है? हाँ, ऊपर कहाँ है? क्षपक श्रेणी में दसवें गुण स्थान या न हुआ, हाँ मोहनीय के लिए न हुआ। तो देखो, उग की अपेक्षा सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का कितना काल है? जघन्य और एक समय नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि स्थितिबंध का काल अंतर्मूर्त होता है सम्यक्त के बाद। और जघन्य स्थितिबंध का कितना काल है? तो कहते एक अनादि अनंत भंग है, क्योंकि अनादि से अजगन्य ही कर रहा था। तो अभव्य में भी तो अनादि अनंत ही हो जाएगा। और दूसरा सादी, उसमें जो सादी भंग है ना, सादी शांत जिसको हम कहेंगे सादी भंग, हाँ उपशम श्रेणी उतर कर फिर चढ़ा, उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि शादी हुई ना, पहले बंद अनादि से अजघन्य बंध था तो उसको हम अनादि का कहते थे। अनादि अनंत तो अभव्यों में तो रहेगा ही रहेगा। अब जिसको शादी हो रहा है, शादी कब होता है? तो उपशम श्रेणी उतरते हुए होता है। तो उपशम श्रेणी उतरा और फिर चढ़ा तो अंतर्मूर्त तक उसका होगा। और दूसरा कौन सा होगा? उपशम श्रेणी उतरा, फिर मिथ्यात्व में रहा, फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद फिर क्षपक श्रेणी चढ़ा। आयु कर्म का काल उत्कृष्ट के समान है। उत्कृष्ट के समान का अर्थ क्या है? जघन्य का देखना है, जघन्य आयु बंध, यानी वो अंतर्मूर्त प्रमाण आयु बनती है क्षुद्र भव की। और वो तो असंक्षेपाधा काल के अंतिम समय में हम देखेंगे वहां पर, यानी वो भी एक समय होगा। और अजघन्य का अंतर्मूर्त होगा। विशेषार्थ, सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध क्षपक श्रेणी में होता है और वह अंतर्मूर्त काल तक होता रहता है। इसी से सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। यद्यपि सात कर्मों का अनादि काल से अजघन्य स्थितिबंध ही होता है, पर जिसने अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के प्रारंभ में उपशम श्रेणी पर आरोहण किया है उसके उनका अजघन्य स्थितिबंध सादी होता है। अब यदि यह अजघन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त काल तक रहकर पुनः श्रेणी पर आरोहण करने से छूट जाता है तो इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त उपलब्ध होता है। छूट जाएगा या क्षपक श्रेणी पर उसने जघन्य कर लिया तभी अजघन्य छूट जाएगा। और यदि ऐसा जीव कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक पुनः श्रेणी पर नहीं चढ़ता है तो इसका काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि सात कर्मों के अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। अब ये तो हो गई ओघ में बात, अब हम मार्गणाओं में देखते हैं। आदेश से नारकियों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। ये जघन्य स्थितिबंध कब होता है याद है? असंगी से आने वाला है, इसलिए एक और दो समय लिया, क्योंकि दो ही मोड़ से आ जाता है ना वो, विग्रह गति में ही लेना। विग्रह गति के दो समय लेते, एक या दो समय। अब अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल, जघन्य ही बात है। अब हमको उत्कृष्ट स्थिति नहीं लेना, नरक की जघन्य आयु सोचनी है। तो जघन्य काल दो समय कम 10,000 वर्ष, क्योंकि दो समय वो विग्रह गति में उसने जघन्य किया था। और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, अजघन्य का उत्कृष्ट काल। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि अजगण्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए, यानी वो पहले पृथ्वी में एक सागर होगा ना, उसका दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं तक काल की प्ररूपणा उत्कृष्ट के समान है। उत्कृष्ट के समान क्या है? जघन्य का एक समय से अंतर्मूर्त होगा ना, सर्व विशुद्ध चौथे गुणस्थान वाला लेना है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। नहीं ना, सम्यक दृष्टि रखना। वो अति सर्व विशुद्ध हुआ, फिर उसने विशुद्धि कम हुई, अंतर्मूर्त रहकर फिर विशुद्धि हुई। देखो विशेषार्थ, जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला असंगी जीव मरकर नरक में उत्पन्न होता है, उसके एक या दो समय तक सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध होता है, वो विग्रह गति में ही होता है। इसी से यहाँ सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। 10,000 वर्ष प्रमाण नरक की जघन्य स्थिति में से ये दो समय कम कर देने पर वहाँ अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल होता है। उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यह स्पष्ट ही है। पहली पृथ्वी की अपेक्षा यह प्ररूपणा इसी प्रकार है, कारण कि असंगी जीव पहली पृथ्वी में ही उत्पन्न होता है, मात्र यहाँ अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल यहाँ की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण कहना चाहिए। शेष पृथ्वियों में जघन्य स्थितिबंध के काल का विचार उत्कृष्ट स्थितिबंध के काल के समान कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था उसका स्वामी कौन है। वहां पर देख लो, देखो जघन्य का स्वामी चौथे गुणस्थान वाला विशुद्ध परिणाम वाला लिया था, पेज नंबर 42। उसमें आदेश से नरक गतियों में बताया था। पहले में पहले वो असंगी से आया हुआ वो बात बता चुके, अब नीचे के नरकों में मिला के सातवीं दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं लाइन है उसमें आदेश में, दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अन्यतर असंयत समय दृष्टि और सर्व विशुद्ध परिणाम वाला। इसलिए ये कंडीशन जो है सर्व विशुद्ध परिणाम वाला, पर वो विशुद्धि के परिणाम में वो तो जघन्य भी करेगा, अजघन्य भी कर सकता है, इसलिए एक समय से अंतर्मूर्त हो सकता है उसका भी। इसलिए उसको उत्कृष्ट के समान बताया। अब तीर्यंचों में घटित करते हैं। तीर्यंचों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वो करेंगे बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जी, क्योंकि वो सागर से भी पल्ले के असंख्यात भाग कम करेंगे। आप कहेंगे पांचवें गुणस्थान वाले को ले लो तो अंत कोड़ा कोड़ी करेंगे, इसलिए एकेंद्रियों को लेना। एकेंद्रियों में भी बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों के जघन्य होता है, वो हमने देखा था ना, बासु बासु प वगैरह। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। देखो तीर्यंच मार्गणा बदल जाने की अपेक्षा जघन्य किसने किया? बादर एकेंद्रिय ने किया। वो जघन्य करके एक समय के लिए उसने अजघन्य किया और अजघन्य करके मरकर मनुष्य में आया, क्योंकि उसके लिए मनुष्य ही दूसरी मार्गणा है, दूसरी क्योंकि हमारी सामान्य तिर्यंचों की मार्गणा है, इसलिए तिर्यंच में से मनुष्य हुआ तो एक समय घटित हुआ। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, हमने देखा था ना, तिर्यंचों में रहने का काल असंख्यात पुद्गल पर आवर्त है, फिर भी असंख्यात लोक काल में वो जघन्य करेगा ही करेगा नियम से। उत्कृष्ट के लिए भी और जघन्य के लिए भी ये कंडीशन बताई, क्योंकि जो परिणाम है ना, स्थितिबंध के योग्य परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण, तो एक जीव इतने काल के बाद इन्हें अन्य अन्य परिणाम करते 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 फिर लौटकर उस परिणाम तक आएगा ही नियम से। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जघन्य स्थितिबंध का काल सामान्य तिर्यंचों के समान है। ये करेगा कौन? पंचेंद्रिय तिर्यंचों में तो असंगी पंचेंद्रिय करेगा, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उसका जघन्य करेगा, और सामान्य तिर्यंचों के समान है यानी एक समय से अंतर्मूर्त है। और जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय यानी उसकी मार्गणा बदल गई, अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच में से अन्य तिर्यंचों में चला जाएगा या उसमें से मनुष्य में आएगा। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, हमने देखा था ना पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में पूर्वकोटि पृथक्त्व प्लस तीन पल्य, वो अपनी अपनी स्थिति लेना। यानी उसने जघन्य किया ही नहीं ऐसा जीव लेना। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट स्थितिबंध के काल के समान है, यानी जघन्य का एक समय से अंतर्मूर्त और अजघन्य का वो भी एक समय से अंतर्मूर्त, क्योंकि उनकी मार्गणा ही अंतर्मूर्त काल की है। अपर्याप्तों में देखो, उत्कृष्ट स्थितिबंध में हमने अपर्याप्तों में क्या देखा था, स्वामी ने हमको उत्कृष्ट की काल देखना है ना। हाँ, तिर्यंच में, हाँ, यानी उत्कृष्ट हो और अनुत्कृष्ट हो, जघन्य एक समय दोनों के लिए और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। यानी जघन्य का भी एक समय से अंतर्मूर्त और अजघन्य भी एक समय से अंतर्मूर्त। विशेषण, यद्यपि तिर्यंच गति में एक जीव के रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, तथापि ऐसा जीव तिर्यंच गति की सब योनियों में परिभ्रमण कर लेता है, इसलिए सात कर्मों के अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल इतना उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि इस जीव के पर्याप्त एकेंद्रियों में उत्पन्न होने पर जघन्य स्थितिबंध संभव है, अतः यहाँ सूक्ष्म एकेंद्रियों के काल की मुख्यता से अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। अब 55 पेज पर आते हैं। मनुष्य त्रिक में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, मयंक भाई किसको लिया था मनुष्यों में जगन्य? हाँ हाँ, दसवें गुणस्थान क्षपक श्रेणी वाला, इसलिए अंतर्मूर्त बताया। अजगन्य स्थिति बंध का जगन्य का एक समय है, अजगन्य का एक समय बताओ लक्ष्मी। ना जगन्य के बाद मरेगा नहीं जगन्य क्षपक श्रेणी में, उसने स्थिति बंध रुक गया था, जगन्य नहीं किया था। उपशम श्रेणी में जगन्य होता ही नहीं है, पर उसका स्थिति बंध रुक गया था, दसवें में आने पर शुरू हुआ, उसको हम अजगन्य कहेंगे। जगन्य के बाद अजगन्य नहीं हुआ है, स्थिति बंध रुकने के बाद फिर शुरू हुआ है, जो अजगन्य ही था। उपशम श्रेणी चढ़ते समय भी थ्रू आउट अजगन्य था, और उतरते समय भी थ्रू आउट अजगन्य ही है। नहीं समझे? नहीं किया ना, उपशम श्रेणी में जगन्य करने का सवाल ही नहीं है। उसको शादी क्यों, शादी क्यों लिया? क्योंकि ग्यारहवें में स्थिति बंध ही नहीं था। समझ में आई ये बात? उपशम श्रेणी में अजगन्य का एक समय कैसे घटित होता है? अजगन्य तो अनादि से था, ग्यारहवें में बंध रुक गया था, ना जगन्य था ना अजगन्य था। दसवें में आने पर अजगन्य जो होना है वो अजगन्य ही है, पर मनुष्य की मार्गणा बदल गई ना मरने पर, देव हो गया। ख्याल में आती बात? ग्यारहवें में नहीं मरा, फिर बंद कराना है ना, एक समय के लिए अजगन्य का बंद कराना है। मरा तो देव हुआ, मनुष्य की मार्गणा समाप्त हुई। ओग में हमने कितना देखा था अजगन्य का जगन्य काल, जो शादी काल जिसका देखा था, याद है? अंतर्मूर देखा था, यानी एक बार उपशम श्रेणी उतरा है और फिर क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष चला गया। यहाँ कितना लिया उसका? हाँ, अजगन्य का एक समय, एक समय ने उपशम श्रेणी दसवें में आया उतर कर, यानी उपशम श्रेणी उतरा दसवें में, एक समय में मरा, और मरकर देव हुआ, इसलिए उसके मनुष्य त्रिक की मार्गणा नष्ट हो गई। हाँ, अभी अजगन्य का उत्कृष्ट काल, यानी जब से मनुष्य त्रिक में जन्मा है तब से अजगन्य ही कर रहा था, उसने क्षपक श्रेणी चढ़ी नहीं, तो उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, जिसको हम पूर्व कोटि पृथक्त्व और तीन पल्ले कहते हैं। हर एक काल, हाँ, सामान्य में हम लब्धि अपर्याप्त भी लेते हैं, हाँ, तो 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, इसलिए सबको कॉमनली क्या कहेंगे? पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले। मनुष्य अपर्याप्तकों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, यह असंगी से मरकर आया हुआ लेना है। विग्रह गति में, अदरवाइज उसकी अपर्याप्तकों में तो अंत कोड़ाकोड़ी का बंध होगा ही होगा, इसलिए असंगी से मरकर आया हुआ लेना। असंगी से ने एक इंद्रिय से कहीं से भी मर कर आता है, असंगी पंचेंद्रिय से आए तो भी वो हजार सागर में कुछ कम, और एक इंद्रिय से मर कर आए तो भी असंगी पंचेंद्रिय जैसा ही हजार सागर में कुछ कम, इतना बंद होता है विग्रह गति में। अब मनुष्य अपर्याप्तकों में अजगन्य स्थितिबंध का जगन्य काल दो समय कम खुदा बहुग्रहण, क्योंकि वो दो समय तक उस असंगी से आया हुआ नीचे के किसी भी जीव समाज से, और फिर उसका अपना क्षुद्र भव वाली जघन्य आयु थी, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। ये उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, लगातार मनुष्य अपर्याप्त आठ बार हो सकता है, तो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त हो गए, यानी उसके आठ भव लेना है उत्कृष्ट में। विशेषण, मनुष्य त्रिक में सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध क्षपक श्रेणी में उपलब्ध होता है और वह अंतर्मूर्त काल तक होता है, यानी वह अंतिम स्थितिबंध अंतर्मूर्त वाला होगा। इसी से यहाँ इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। उन्होंने अनुत्कृष्ट का नहीं समझाया, पर हम समझ सकते हैं, है ना। देवों में सामान्य नारकियों के समान काल है, क्योंकि असंगी से आया हुआ जघन्य का एक समय से दो समय होगा। और अजघन्य का जघन्य काल 10,000 वर्ष में से दो समय कम कर देना, और अजघन्य का उत्कृष्ट अपनी अपनी जो स्थिति होगी उसको ले लेना। भवनवासी और व्यंतरों में पहली पृथ्वी के समान काल है। यानी वही दो समय कम करना 10,000 वर्ष में से, इतनी विशेषता है। यहाँ अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कहते समय अभी इनकी स्थिति समझना चाहिए। नरक में तो एक सागर की थी, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में इन्हीं के उत्कृष्ट स्थितिबंध के काल के समान काल कहना चाहिए, यानी उनका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और अजघन्य के लिए अपनी अपनी स्थिति कहना ही, यानी अजघन्य का जघन्य भी अंतर्मूर्त होगा और दो उत्कृष्ट दो जघन्य के बीच में, और अजघन्य का उत्कृष्ट कहना है तो अपनी अपनी स्थिति समझनी चाहिए। अब सब एक इंद्रियों में, ये गति मार्गणा हो गई हमारी। अब एक इंद्रियों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल सामान्य तीर्यंचों के समान है। जो एक इंद्रियों में बादर पर्याप्त एक इंद्रिय करेंगे, एक समय से अंतर्मूर्त कर सकते हैं जघन्य। और अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, क्योंकि जघन्य किया फिर अजघन्य करके मरा, ये हो सकता है। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। अभी इनके बादरों में, यानी बादर एक इंद्रियों में अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल, सबके लिए जघन्य तो वही बात होगी, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। क्योंकि बादर एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल है अंगुल का असंख्यात भाग, तो उसने जघन्य किया ही नहीं ऐसा लेना। बादर पर्याप्तकों में अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्यात 1,000 वर्ष है। सबका अजघन्य का उत्कृष्ट काल ही बताना चाहते हैं। अजघन्य का जघन्य काल तो एक समय होगा सब जगह। बादर अपर्याप्तकों में अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपर्याप्तों में लगातार रहने का तो अंतर्मूर्त काल होगा। सूक्ष्म एक इंद्रियों में अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। उसकी अपनी काय स्थिति असंख्यात लोक होने पर भी अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक वो लौट कर फिर जघन्य करेगा ही करेगा। इनके पर्याप्तकों और अपर्याप्तकों में अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि लगातार सूक्ष्म अपर्याप्तों में रहने का काल भी अंतर्मूर्त, लगातार सूक्ष्म पर्याप्तों में रहने का भी काल अंतर्मूर्त। विशेषार्थ सामान्य एकेंद्रियों में अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल जिस प्रकार तीर्यंचों में घटित करके बतलाए हैं, उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। तथा एकेंद्रिय के शेष अवांतर भेदों में यह काल उस उसकी काय स्थिति जानकर समझ लेना चाहिए। मात्र सूक्ष्म एकेंद्रियों में यह काल अपनी काय स्थिति प्रमाण प्राप्त न होकर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण उपलब्ध होता है, इतना विशेष जानना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है। अब आते हैं पेज नंबर 56 पर, 56। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय तथा इन्हीं के पर्याप्तकों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल सामान्य तिर्यंचों के समान है। करने वाले पर्याप्त जीव होंगे और जघन्य एक समय से अंतर्मूर्त तक करेंगे। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, क्योंकि अन्य पर्याय में चले गए उस अपेक्षा से लेना, जैसे हमने अनुत्कृष्ट का देखा था। और उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है, क्योंकि द्विंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, तीन्द्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल इस तरह से ले लेना। द्विंद्रिय आदि तीनों अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान काल है, यानी जघन्य का तो एक समय अंतर्मूर्त होता है, अजघन्य का एक समय से लेकर वो भी अंतर्मूर्त ही होगा, क्योंकि अपर्याप्तों में हाँ लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त है। पंचेंद्रिय और त्रस तथा इनके पर्याप्त जीवों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल ओघ के समान है, कितना होगा? हमें पंचेंद्रियों में और त्रसों में दोनों का अलग अलग पन कितना होगा? हम बंद लगातार बंद का काल पूछ रहे हैं, बंद कितना होता है वो नहीं पूछा है। अंतर्मुख कहाँ पर? कहाँ स्वामी कौन है? पंचेंद्रिय पन स्वामी कौन है? पंचेंद्रिय तो बहुत है, छपक वाला अंतिम स्थिति बंध लेना। ओके समान ने उसका अंतर्मूर्त ही होता है, एक समय नहीं घटित होगा। अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि वो पंचेंद्रिय का पंचेंद्रिय रहेगा ना, त्रस का त्रस ही रहेगा। हमने जो अन्य अन्य मार्गणा थी, वेद मार्गणा या अन्य जो भी कुछ, तो उसमें तो एक समय के बाद देखी थी, परंतु यहाँ हमको तो मरकर भी जाएगा तो पंचेंद्रिय रहेगा, इसलिए उसका अंतर्मूर्त लेना जो दूसरी बार क्षपक से नहीं चढ़ेगा तब, तो जघन्य काल अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, पंचेंद्रिय की अपनी स्थिति और त्रस की अपनी स्थिति लेना। 1000 सागर वो साधिक 2000 सागर, क्योंकि त्रस इन जनरल बताए ना, पर्याप्तों में 2000 सागर। इनके अपर्याप्तकों में यानी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान काल है। अब पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों में वो विग्रह गति वाला लेना था, जघन्य कहाँ होगा? नहीं, पर असंगी कहीं पर हो सकता है ना, यानी उसको विग्रह गति में लेने की जरूरत नहीं है। पंचेंद्रिय असंगी जीव करेगा, वो जघन्य करेगा। पंचेंद्रिय तीरियंच अपर्याप्त में कितना अंतर्मुख लिया था ना एक समय से। पेज 50 उत्कृष्ट की बात नहीं है, जघन्य की बात। उत्कृष्ट सिद्धि बंध के समान होता है, एक समय से अंतर्मूर्त होता है। असंग करेंगे अब ये पृथ्वी का एक 88 नंबर का चार लाइन पढ़ लेते हैं। सब पृथ्वी का एक, सब जल का एक, सब अग्नि का एक, सब वायु का एक, वनस्पति का एक, सब वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और सब निगोद जीवों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल एकेंद्रियों के समान है, यानी उसका अपना अपना एक समय से अंतर्मूर्तों का। इनमें अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है क्योंकि अन्य पर्याय में चले गए, और उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट स्थितिबंध के उत्कृष्ट काल के समान है। ये पेज नंबर 50 पर हमने देखा था, क्योंकि उत्कृष्ट काल पृथ्वी कायिकों में असंख्यात लोग देखा था। हर एक में ये लगा लेना, देखो सामान्य से लेंगे कोई कायिक तो असंख्यात लोग, बादर पृथ्वी कायिक लेंगे तो कर्म स्थिति प्रमाण, बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त लेंगे तो संख्यात हजार वर्ष प्रमाण, और बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त लेंगे तो अंतर्मूर्त प्रमाण। ये पहले हमने देखा था उसको, यानी जैसे अजगण्य का उत्कृष्ट काल है वैसा ही अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल होता है। अब यही रुकेंगे आज हम। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देतहिं।